केशव कृष्ण केशव लक्ष्मण
राम राघव पाहि
सिर पर हाथ रखकर प्रणाम किया और मधुर वाणी में बड़े उत्साह के साथ सीता जी को सांत्वना दिलाते हुए पहले मधुर वाणी में प्रश्न किए। हे कमल नेत्रों वाली, शिखा का अवलंबन लेकर खड़ी रहने वाली, शरीर पर मलिन वस्त्र धारण करने वाली, सदाई सुख का सेवन करने योग्य रहने वाली, आप अपने नेत्रों के अंदर ये शोक के आंसू क्यों धारण कर रखे हैं? आपके इन आंसुओं से ऐसा लगता है कि किसी कमल से पानी की बूंद गिरती हो। देवताओं में, असुरों में, नागों में, गंधर्वों में, राक्षसों में, यक्षों में, किन्नरों में कहां आपने जन्म लिया है? क्या आपकी स्थिति है? आप इनमें कहां जन्म लेकर कहां विवाहित हुई हो? आप तो हमको दिव्य देवता के समान प्रतीत होती हो। कहीं आप चंद्रमा से रहित रोहिणी तो नहीं हो? कहीं आपको पाताल के अंदर भेजकर चंद्रमा रोहिणी की प्राप्त रोहिणी को यहां तो नहीं भेज दिए हैं? क्या कोपात्मा यदि वा मोहात, क्या वशिष्ठ जी ने क्रोध करके या कोई और किसी कारण से अपनी पत्नी अरुंधति को अपने घर से निकाल दिया हो और वो आप अरुंधति यहां आकर विराजमान हो गई हो? कौन है आप कुछ बताएंगे तब पता चलेगा। आपके पिता कौन है? आपके भ्राता कौन है? आपके भ्राता कौन है? आपके पुत्र कौन है? आपका लोक कौन है? आपका स्थान कौन है? ये सब बातें आपके बताए बिना मैं बानर जान नहीं सकता हूँ। आप यहाँ किस विषय में शोक कर रही हैं? क्या कोई प्राणी परलोक चला गया या कोई आप पर कोई भयंकर आफत आ गई? क्या बात है? हे देवी, ज्यादा रोने के कारण से और ज्यादा लंबी लंबी श्वास लेने के कारण से, ज्यादा पृथ्वी पर पड़े रहने के कारण से, इन सब बातों से मैं ये देख रही हूँ क्योंकि आपका शरीर पृथ्वी का स्पर्श करता है, अतः आप कोई देवी तो नहीं हो। आप है तो इस पृथ्वी के ही। आप कोई राजा की रानी हो सकती हो, आप किसी राजा की कन्या हो सकती हो। जैसा जैसा मैंने आपके शरीर पर चिन्ह देखा है उसके अनुसार ऐसा लगता है आप बहुत बड़े राजा की कन्या हो और किसी बहुत बड़े राजघराने में आपका विवाह हुआ है। हे देवी, मैंने सुना है कि रावण ने जनस्थान से किसी सीता नाम की स्त्री का हरण किया है। क्या आप सीता हैं? आप मुझे अपना समझ करके ये सब बात बताइए। हे देवी, आपका रूप मनुष्यों में है लेकिन मनुष्यों में भी हर जैसा ऐसा रूप नहीं मिलता, अतः आपका रूप अति मानुष है। कहीं तपस्या में लीन रहने वाले तापस वेश बनाए हुए आप राम जी की पत्नी ही तो नहीं हो? मेरे मन में तो ऐसा ही विश्वास है कि आप राम पत्नी हो, फिर बाकी जितने मेरे संदेह वो आपके बोलने से ही दूर हो। ये राम का जब कीर्तन हुआ, राम की बात सुनी और ये राम के विषय में सुनता सुनते ही ओहो, सीता को इतनी प्रसन्नता हुई, ऐसी प्रसन्नता हुई जैसे कोई गर्मी में झुलसने वाली लता हो और वो लता एकदम जमीन पर गिर गई हो उसके पत्ते पीले पड़ गए हो और वहाँ पर किसी ने उसको खूब सा जल दे दिया हो, वो लता जैसे हरी भरी हो जाए, ऐसे सीता प्रसन्न हो गई। प्रसन्न होकर के वो टहनी पकड़ी हुई सीता यूं वृक्ष के तने का सहारा ली हुई कहने लगी, देखो इस संसार में बहुत बड़ी बड़ी राजधानियां हैं, उन राजधानियों में अयोध्या सबसे बड़ी राजधानी है। बड़े बड़े राजा लोगों ने अयोध्या पर शासन किया है, उनमें बहुत बड़े शासक महाराज दशरथ जी हुए हैं, जिन्होंने कभी भी शत्रु सेना के सामने हार नहीं स्वीकार की है। उन महाराज दशरथ की मैं पुत्र वधु हूं। मैं जनक जी महाराज जो वैदेह हैं, मिथिला के स्वामी हैं, उनकी मैं पुत्री हूं। मेरा नाम सीता है, मेरे पति का नाम श्री राम है, और मैं जब 12 वर्ष की थी तब मैं राम जी के घर में आ गई थी। वहां पर रहते रहते मुझे बहुत अच्छे अच्छे भोग पदार्थ वगैरह मिले थे, और देखो 12 वर्ष तक मैंने 12 वर्ष तक राम जी के घर में निवास किया। ये 12 वर्ष तक मैंने निवास किया, और 13वां वर्ष जब मेरे विवाह का हुआ उस समय में हमारे महाराज थे दशरथ जी, उनके पास में केकई ने वरदान मांगकर मेरे पति के होने वाले अभिषेक को अपने पुत्र भरत के लिए किया, और हम लोगों को 14 वर्ष का वनवास मिला। मेरी माँ के मेरी सासू जी केकई इतनी ज्यादा बिगड़ गई दशरथ जी पर कि मैं खाऊंगी नहीं, मैं पीऊंगी नहीं, मैं भोजन करूंगी नहीं, और मैं जो है राम का ही अभिषेक कर दिया तो मैं जीवन में फांसी लगा के मर जाऊंगी, ऐसे उनको बिचारों को खूब डराया धमकाया। तो बेचारे भोले भाले दशरथ जी महाराज ने उसकी वाणी पर विश्वास करके और वरदान के द्वारा उन्होंने केके को प्रसन्न किया और हम लोग वन में आ गए। असल में ये वरदान केवल राम जी के लिए था। राम जी भरत जी से बड़े थे, वो राज्य प्राप्ति के अधिकारी थे, परंतु वरदान से जब केके ने उनका राज्य पर अधिकार नहीं रखा तब वे अपने अपने पिता की वाणी सत्य करने के लिए दंडकारण्य की ओर चले आया। मेरे पति का ये विश्वास रहता है, दद्यात् न प्रतिगृह्णीयात्, देओ लेकिन लेने की इच्छा मत करो, सत्य बोलो झूठ मत बोलो। इस कारण से मैं वास्तव में राम जी के साथ ही रवाना हो गई। मुझे मेरी माँ ने भी मना किया, माने सासू जी ने मना किया, मुझे मेरे राम जी ने मना किया, सब लोगों ने मना किया, लेकिन मैं रुकी नहीं और वन के लिए रवाना हो गई। देखो मेरा भी तो एक धर्म होता है ना, पति पर आया हुआ कष्ट प्रकारांतर से पत्नी पर भी है। आप सोचिए कि पति तो मेरे वनों में भटकते रहे और मैं जंगल में कैसे रह सकती हूँ। बिना पति के पत्नी को स्वर्ग में क्या अच्छा लग सकता है? नहीं लगता ना। इस कारण से मैं साथ में हो गई, और मेरे देवर लक्ष्मण जी भी अपने बड़े भाई राम के प्रति बहुत प्रेम रखते हैं, वो भी राम के साथ रवाना हो गए। हम दंडकारण्य में घूमते घूमते आए थे, वहां पर ये रावण पहुंच गया। रावण ऐसा दुरात्मा, उसने हमारे साथ ऐसा माया का जाल रचा कि राम और लक्ष्मण को उन्होंने दूर भेज दिया और मुझे उसने अकेली समझ के मेरा हरण कर लिया। और यहाँ भी मुझे बहुत डराता है, बहुत धमकाता है, और कहता है कि 2 महीने के अंदर अंदर तुम मुझे अपना बना लो, नहीं तो मैं तुमको मार दूंगा। अब 2 महीने की मेरी अवधि है, 2 महीने के बाद मुझे तो मरना है। उस बात को सुनकर के हनुमान जी महाराज ने सांत्वना देते हुए कहा, सीता जब इस प्रकार से कहकर रोने लगी तब हनुमान जी ने सांत्वना देते हुए कहा कि हे सीता जी, मैं राम जी का दूत हूँ, आपके पास उनका संदेश लेकर के आया हूँ। श्री राम ने आपका कुशल क्षेम पूछा है और उन्होंने अपना कुशल क्षेम आपके लिए कहा है और यही कहा है कि सीते, एक तुम्हारे बिना जो मुझे दुख होता है उस दुख के अलावा और क्या दुख होता है ये मैं जानता ही नहीं। तुम्हारे बिना जो दुख होता है बस उसी दुख को जानता हूँ, और संसार में कोई दुख होता होगा मैं तो नहीं जानता। लक्ष्मण जी ने भी अपना कुशल क्षेम कहते हुए कहा कि जो मेरे बड़े भाई को दुख है और बड़े भाई के बिना आपको दुख है, उसके अलावा मुझे कोई दुख नहीं है, मेरे लिए भी यही दुख है। और जो सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र को जानने वाले, ब्रह्मास्त्र को जानने वाले, दूसरे अस्त्रों को जानने वाले, वेदों की बात जानने वाले, वे दशरथ नंदन राम आपके लिए भी कुशल क्षेम पूछते हैं कि सीते तुम कहाँ हो, जहाँ भी हो तुम कुशल पूर्वक तो होना। लक्ष्मण जी ने भी जो अपने भाई का खूब सेवा करते अनुचर है, उन्होंने भी आपके विषय में पूछा है। आपके विषय में उन्होंने भी शोक से संतप्त होकर अपने सिर को झुकाकर आपके चरणों में प्रणाम कहा है और आपका कुशल क्षेम पूछा है। सीता जी ने दोनों का कुशल क्षेम जाना, जान करके मन में बड़ी हर्षित हुई और नेत्र बंद करके उसने राम का ध्यान किया और प्रेम से उसके आंसू टप टप गिरने लगे। हनुमान जी से कहा, हनुमान जी से कहा, अरे भाई अभी हनुमान नाम नहीं दिया, पता नहीं अभी कुछ भी। हनुमान जी से कहा, कल्याणी वत गाथे, अरे भाई तुम जो ये बात बोलते हो बड़ी मीठी बोलते हो, बड़ी अच्छी बोलते हो, और इस बात को सुनते सुनते मुझे इतना आनंद आता है। इस बात को सुनने के लिए मनुष्य सैकड़ों वर्ष तक यदि जीवित रहे और कोई दुख भी पाना पड़े तो पा लेना चाहिए, परंतु इस बात को सुनना चाहिए। देखो सीता जी क्या बोलती है। सीता जी का कहने का अर्थ है कि राम जी की कथा, चाहे जीवन में कितना ही दुख हो, दुख पाकर के भी राम जी की कथा सुनने को मिलती हो तो सुननी चाहिए। इस प्रकार से सीता जी के मन में राम जी के प्रति बड़ा प्रेम पैदा हुआ और सीता और राम के आलाप में थोड़ा थोड़ा विश्वास जागृत हुआ। और हनुमान जी महाराज ने सोचा कि शोक संतप्त सीता को मैं सब समाचार कहूं, परंतु बहुत दूर खड़ा हूं, उस दूर की आवाज को यदि ये राक्षसियां सुनेगी तो ये अर्थ का अनर्थ करेंगी और कहीं रावण को जाकर बोल देंगी। अतः हनुमान जी महाराज रावण हनुमान जी महाराज सीता के पास भी आने लगे। अब वो जो जो हनुमान जी विश्वास के साथ माता सीता के पास आए, क्यों क्यों सीता डरकर चली गई और सीता ने समझा कि तो रावण ही है, देखो मेरी तरफ आ रहा है। तो सीता कहने लगी, अरे धिक्कार है, धिक्कार है, मुझे धिक्कार है, तुझे धिक्कार है, तू रावण है, तू नया नया रूप बनाकर हमारे सामने आता है, तुम चले जाओ, तुम मेरा स्पर्श नहीं कर सकते, दूर रहो, दूर रहो, अब तुम बानर बन के आए हो, कभी तुम साधु बन के आते हो, ओहो मैं भी कैसे भोली भाली, मुझे भी तो कहाँ अकल, शोक में डूबी हुई, मैंने तो मेरे मन की सारी बातें कह दी, अरे ये लोग इस बात के लायक नहीं होते। उसी समय में सीता उस अशोक वृक्ष की टहनी को पकड़ी हुई थी, उसको छोड़ दी और छोड़ करके वो जमीन पर बैठ गई और जमीन पर बैठ करके और फूट फूट के वो रोने लगी। हनुमान जी महाराज ने उनको प्रणाम किया और प्रणाम करके हनुमान जी महाराज ने बड़े विरह के साथ, बड़े दुख के साथ कुछ कहना प्रारंभ किया। इतने में सीता ने कहा, ए तुम मायावी हो रावण, तुम स्वयं अनेक प्रकार की माया जानते हो, उत्पाद ऐसी में भूय संतापम, तुम मेरे मन में फिर दोबारा संताप पैदा करने के लिए ये सब काम करते हो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। अपने स्वरूप का त्याग करना, पहले तुम साधु का रूप बनाए और वहाँ पर मुझे ठग करके यहाँ ले आए। तुम वो रावणों में तुमको समझ गई, क्योंकि यहाँ मुझे कौन ऐसी राम कथा सुना सकता है। तुम अपने में बस में करने के लिए सब काम करते हो, यूँ तो मैं तुम्हारे बस में आई नहीं, अब तुम मुझे राम जी की चिकनी चुपड़ी बातें कह करके और ये बात कहना चाहते हो। मैं उपवास से बिना खाए पिए देखो कितनी दुबली हो गई है, और हे इच्छा अनुसार रूप बनाने वाली निशाचर, मेरे मन के अंदर बहुत आग आग हो रही है। और देखो तुम ज्यादा मुझे संताप मत दे, ज्यादा संताप देने से ये मेरे मन की आग तुम्हारे अंदर लग जाएगी और यही आग तुम्हारी लंका में लग जाएगी, और इसी आग से देखो तुम कहीं लंका को खो न बैठो, इस लंका में आग न लग जाए। हनुमान जी महाराज ने कहा अच्छी बात है, लंका में भी आग लगने की बात है, परंतु हे वानर श्रेष्ठ, जब मैं तुझे प्रगाढ़ भाव से देखती हूँ तो मेरे मन में तेरे प्रति एक स्नेह भी पैदा होता है। रावण के मन में स्नेह पैदा नहीं हुआ था, रावण को देखकर मेरे मन में स्नेह पैदा नहीं हुआ था, तुझे देखकर एक स्नेह भी पैदा हो रहा है। मेरा चित्त जिस प्रकार से बहते हुए नदी के प्रवाह से तट है वो खंडित होते हैं, ऐसे मेरा चित्त भी तुम्हारे द्वारा राम जी की बातें सुन सुन करके और शोक रूपी तट को खंडित होते हुए देख रही हूँ। मेरा शोक कम हो रहा है, शोक कम होने के कारण से मैं कुछ कुछ ऐसा भी समझ रही हूँ कि संभवतः तुम रावण न हो, पर करूँ क्या, मुझे कोई सही बात बताने वाला भी तो नहीं है। मैं यहाँ बहुत जागती रहती हूँ, मुझे स्वप्न तो कभी आता ही नहीं क्योंकि सोती नहीं, इसलिए क्या करूं, तुम्हें मैं स्वप्न में देख रही हूँ क्या? स्वप्न में तो बानर का दर्शन बड़ा खोटा होता है, बानर कहीं राम लक्ष्मण पर आफत न आ जाए, पर ये स्वप्न नहीं है, क्योंकि स्वप्न में तो आदमी पसर करके सोता है। देख मैं तो बैठा हुआ बैठी हुई हूँ, कहाँ सोई हुई हूँ, और मैंने तो कभी यहाँ सोकर के विश्राम लिया ही नहीं है, क्योंकि विश्राम में राम लेना है, मुझे विष को नहीं लेना है, विष राम, एक तरफ तो विष है एक तरफ राम है, तो ये राम और विष इस दोनों में से मुझे तो राम चाहिए। अब भाई इसलिए मुझे विष चाहिए नहीं, विश्राम नाम की क्या चीज होती है, मैं लंका में आने के बाद सब भूल भाल गई और हे बानर में तो पागल हो गई, मेरे दिमाग में कोई गर्मी चढ़ गई, मैं कोई पागल हो गई क्या बात है, मेरे उन्माद हो गया कि मुझे मृग तृष्णा की तरह से क्या क्या दिखाई दे रहा है कुछ पता नहीं। देखो यदि तुम रावण हो तो ये अति करना छोड़ दो, और देखो यदि तुम वास्तव में कोई और हो, मेरे हितेशी हो, तो अपने ढंग से बात करो, सीधी सीधी बात करो, क्योंकि मैं तुम्हारी कई भी बात भी समझती हूँ, मेरे मन की बात भी समझती हूँ, मुझे ये भी पता है कि क्या मुझे बोलना चाहिए क्या मुझे नहीं बोलना चाहिए। इसका मतलब उन्माद तो नहीं है, पागल तो नहीं हूँ, क्योंकि पागल आदमी सोचता नहीं कि क्या बोले क्या ना बोले। महाराज श्री बोलते थे कि पागल आदमी जितना सच्चा होता है दूसरे आदमी तो चालाक होते हैं, पागल आदमी बेचारा बिल्कुल सीधा साधा होता है, क्योंकि वो सब बात बोल देता है, न कहने वाली बात भी बोलते थे बोल देता है। क्या नहीं, मेरे उन्माद नहीं है, मेरे कोई मोह नहीं है, क्योंकि मैं सब बात समझती हूँ। ओहो मैं क्या करूँ, मैं कुछ समझ नहीं पाई। इस प्रकार से सीता हनुमान जी को देखती है और देखते देखते उसको ऐसा भी लगता है कि रावण भी हो सकता है। अब हनुमान जी महाराज ने देखा कि नहीं नहीं, अब सीता के मन में विश्वास पैदा करना होगा, यदि हम सीता के मन में विश्वास नहीं किए तो कभी भी विश्वास पैदा नहीं करेगी, कभी भी विश्वास पैदा नहीं होगा। अरे विश्वास एक बहुत बड़ी चीज होती है। सीताया निश्चितम बद्वा हनुमान मरुतात्मजय। अब हनुमान जी ने हर्ष बढ़ाते हुए सीता जी के सामने कहा, हे सीता जी, मैं उन राम का दर्शन करके आया हूँ, वे सूर्य के समान तेजस्वी है, वे चंद्रमा के समान सबको शीतलता प्रदान करने वाले हैं, वे संपूर्ण लोक के राजा हैं, जिस प्रकार से कुबेर है वैसे वे राम हैं, वे राम साक्षात विष्णु के समान अपने पराक्रम को सुरक्षित रखने वाले हैं, सत्यवादी हैं, मधुर बोलने वाले हैं, बृहस्पति के समान में वे ज्ञानवान हैं, इंद्र के समान रूपवान हैं, कामदेव के समान सुंदर हैं, उनका क्रोध और उनका हर्ष कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है और उनके नीचे अनेकों अनेकों प्राणी आश्रित हैं और वे अपक्रम्याश्रम पदा मृग रूपेण राघवम शून्य ये नापनीतासी तस्य द्रक्षसि तत्फलम। वे राम किसी कारण से यदि वन में आ गए हैं और एक मृग के बहाने से यदि पीछे से आपका हरण हुआ है तो इसका फल आप अपनी आंखों से बहुत जल्दी देखने वाले हो, बहुत जल्दी ही युद्ध के अंदर रावण मारा जाएगा और उनके क्रोध से छोड़े हुए बाण कभी व्यर्थ नहीं जाएंगे, रावण और रावण का पूरा वंश समाप्त हो जाएगा। उन राम का मैं दूत हूँ और आपके वियोग में दुखी रहने वाले राम ने आपका कुशल क्षेम पूछा है, सुमित्रा नंदन लक्ष्मण जी ने आपका कुशल क्षेम पूछा है, महाबाहु राम ने आपका बहुत बहुत कुशल क्षेम पूछा है, हम बानरों के राजा सुग्रीव ने आपको अनेक शय नमस्कार करके कुशल क्षेम पूछा है, ये सब आपका कुशल क्षेम चाहने वाले सब पूरे प्रयत्न में लगे हुए हैं। हे सीता जी, आप राक्षसी के वश में हो इस बात को मैंने देखा है और आप ये देखेंगी राम जी एक रथ में बैठे हुए, लक्ष्मण जी एक रथ में बैठे हुए करोड़ों बांदरों के साथ यहाँ आकर रावण का संहार कर रहे हैं। मैं उन सुग्रीव का मंत्री हूँ, मेरा नाम हनुमान है, मैं यहाँ लंका में आया हूँ, समुद्र का मैंने लंघन किया है और हे सीता जी मैं रावण के महल में जाकर आया हूँ और रावण के सिर के ऊपर मैं अपना पैर रख करके आया हूँ। रावण सोया हुआ था, उसको पता नहीं था, चुपचाप गया और मैंने अपना पैर था उसके माथे पर रख दिया, इसका मतलब रावण निश्चित रूप से पराजित होगा, इसलिए हे देवी तुम मुझ पर शंका मत करो, किसी प्रकार से मुझे देखने में भूल मत करो और मेरी वाणी में श्रद्धा करो कि ये राम का दूत हनुमान है। ये बात सुन करके और सीता के मन में फिर बड़ी खुशी पैदा हुई। सीता जी ने पूछा, अच्छा यदि तुम राम के पास में आए हो तो बताओ राम को तुम कैसे जानते हो, राम का क्या स्वरूप है, राम कैसा है, लक्ष्मण का रूप रंग कैसा है, राम का रूप रंग कैसा है, एक बात तो बताओ वानर और नर का ये मेल कैसे हुआ, बंदरों का और मनुष्यों का कैसे मेल हो सकता है, राम जी को कोई मनुष्य नहीं मिले, राम जी को बंदर ही मिले यहाँ भेजने के लिए और कोई नहीं मिला, तो बंदर और मनुष्य इनकी आपस में क्या एकता हुई, कैसे जान पहचान हुई, इस बात को तुम दोबारा कहो, मेरा शोक है वो इतना छा गया है वानर कि तुम कुछ बात कहते हो वो थोड़ी थोड़ी बात जाती है और पहले तो मेरे बात कुछ गई नहीं, अब तुम बोले हो दोबारा तो मेरे अंदर थोड़ी थोड़ी बात का प्रवेश हो रहा है। अच्छा बताओ तुम यदि राम के पास गए थे तो राम का मुख कैसा है, आंख कैसी है, कान कैसे हैं, कपोल कैसे हैं, गर्दन कैसी है, उनका छाती कैसी है, उनका पेट कैसा है, हाथ कैसे हैं, अंगुलियां कैसी हैं, अंगुलियों के नाखून कैसे हैं, हाथ की रेखाएं कैसी है, चरण कैसे हैं, चरणों की रेखाएं कैसी है, राम के विषय में, लक्ष्मण के विषय में, दोनों के विषय में मुझे बताओ। सीता जी ने जब ये प्रश्न किया तो हनुमान जी महाराज ने सीता जी से कहा, ओहो हे सीता जी आपको कोटि से मैं प्रणाम करता हूँ, आज आपने राम जी के स्वरूप के वर्णन के लिए मुझे कहा, मुझे राम जी के स्वरूप में इतना आनंद का अनुभव नहीं होता जितना उनके स्वरूप का ध्यान करके उसका वर्णन करने में आनंद का अनुभव होता है। देखो हम लोगों ने ज्यादा बातें सुन ली इसलिए हृदय में उसको हम आदर कम देते हैं, वस्तुतः भगवान की कथा किस लिए होती है, हमारी चित्त वृत्तियों में भगवान बैठ जाए, कथा के द्वारा, ध्यान के द्वारा, नाम के द्वारा, नाम है, कथा है, ध्यान है, ये भगवान को पकड़ने के साधन है। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि ओहो अब मैं आपको राम जी के चिन्ह और लक्ष्मण के चिन्ह बताता हूँ। राम कमल के समान नेत्र वाला है, राम पूर्ण चंद्रमा के समान खिला हुआ है, राम रूप संपत्ति से संपन्न है, और हे सीते राम बचपन से ही बड़े सुंदर हैं। ऐसा नहीं कि अवस्था बढ़ने के बाद सुंदरता आई हो, राम जब से जन्म लिए तब से सुंदर है। ज्यो ज्यो राम जी की आयु बढ़ती है त्यों 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 उनकी सुंदरता में बड़ा निखारापन आता है। तेज के अंदर सूर्य के समान है और क्षमा के अंदर पृथ्वी के समान है, ज्ञान में भी बृहस्पति के समान है, यश के अंदर इंद्र के समान है, सब जीवों के रक्षक है, और आत्मी जो लोग हैं उनमें प्रेम रखने वाले उनके साथ उनका विशेष प्रेम है। वे राम जी धर्म की रक्षा करते हैं, अपनी मर्यादा की रक्षा करते हैं। हे भामिनी, वे राम चातुर्वर्ण्य से रक्षिता, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र चारों वर्णों की रक्षा करते हैं। वे मर्यादा की रक्षा करते हैं, लोगों के लोकों का निर्माण करते हैं और लोकों का निर्माण करवाते हैं। वे बहुत प्रदीप्त रहते हैं, वे ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित हैं, वे संतों का उपकार मानने वाले हैं, और प्रचार किस बात का, कर्मों का, सत्कर्मों का कैसे प्रचार किया जाए इस बात को वो खूब अच्छी तरह से जानते हैं। राम राजनीति के प्रकांड विद्वान है, ब्राह्मणों के परम आश्रय है, ज्ञानवान है, शीलवान है, बड़े विनयी है। राम जी यजुर्वेद के बड़े ज्ञाता हैं और वेद जानने वाले ब्राह्मणों के द्वारा उनकी पूजा होती है। धनुर्वेद के बड़े जानकार हैं और छह जो वेद के अंग है उसमें बड़े निष्णात हैं। विपुल उनके कंधे हैं, मन खूब ऊंचे कंधे हैं, महाबाहु हैं और शंख के समान उनकी ये गर्दन है, चेहरा बहुत सुंदर है। उनके जो ये पिंडलियां हैं, ये पिंडलियां थोड़ी छोटी छोटी हैं और उनके नेत्र हैं वो लाल हैं। उनका नाम राम है, वो उनका स्वर बड़ा मीठा है और उनका रंग है वो बड़ा सुंदर है। वो सम विभक्त अंग है, केकी अंग बड़े विभक्त सम है। देखो ये दांत है ना, ये दांत लोगों के ऊंचे नीचे होते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे ये दंतावली उनकी सम है और ऐसे ही भाई ये होठ है ना, होठ सबके सम नहीं होते, होठों में थोड़ा सा तिरछापन होता है। और ये कान है, ये कान भी सबके सम नहीं होते, कान की लंबाई और कान की देखे यहाँ पर ये यहाँ तक देखा जाए तो सबकी बराबर ही नहीं आती। कान की जो लटक होती है इसमें भी फर्क होता है। और जो है हाथ होते हैं, हाथ समान नहीं होते, हाथों में अंतर रहता है, पैरों में भी अंतर रहता है। कहते नहीं हमारे राम के तो सारे अंग जो जो जिन जिन में फर्क रहा करता है उनमें कोई फर्क नहीं, सब समान है। श्याम का वर्ण है, श्याम वर्ण भी कैसा है, अप्रिय श्याम नहीं है, प्रिय श्याम है। देखो प्रिय श्याम कैसा भी के भगवान बदल के समान काले हैं। अब बदल के समान बताया भाई, तो बदल के समान भी काले हैं तो दो तरह से आकाश में देखना चाहिए। एक तो जिस समय बरसात होती हो काली काली घटाएं उमड़ती हो तो काला जैसा रंग होता ना, ऐसे राम है वो। देखो काली घटाएं सबको प्रिय लगती है, मन लोगों का आनंद में डूब जाता है, इसलिए भगवान उस रंग को अपने शरीर में रखते हैं। और एक जब बरसात हो जाए और बरसात हो जाने के बाद बादल जब सब बिखर जाए और सूर्य प्रचंडता से जब चमकता है तब वो नीला आकाश एकदम गहरा गहरा दिखता है, ऐसे भी वो राम जी वहाँ आशा रहती है। देखो एक में तो है कि वर्षा हो रही है और फिर उससे दूसरे में आशा होती है, आशा तो एक तो विश्वास और एक आशा, ये दोनों बादलों से होती है। अतएव राम जी महाराज ने बादल जैसा रूप बनाया है। और भाई जिन अंगों को स्थिर रहना चाहिए वे अंग स्थिर है, जिनमें समता रहनी चाहिए वे सम है, और जिन को गंभीर रहना चाहिए वे गंभीर है, और जिन अंगों को ऊंचा रहना चाहिए वे ऊंचे हैं, और जिन को जो है जैसे ओष्ठ है, हनु है, नाक है, ये अपने ढंग के अपने ऊंचाई के साथ हो ये ठीक रहे, इस प्रकार से वे हैं। वे राम सत्य धर्म में रहने वाले और संग्रह अनुग्रह में रत है। संग्रह माने धन का संग्रह नहीं, देखो धन का संग्रह होता है, एक जन का संग्रह होता है। राम जी अपने भक्तों का संग्रह करते हैं, उन्होंने अपने भक्तों का संग्रह कर रखा है और अनुग्रह और दिनों के ऊपर विराम कृपा करते हैं। देश काल आदि के विभाग को ठीक समझने वाले हैं और सब लोगों से बड़ा प्रिय संवाद करते हैं, ऐसे तो राम है। और ऐसे उनका भाई है लक्ष्मण, अनुराग में रूप में गुणों में किसी प्रकार से वो राम से कम नहीं है। वो राम और लक्ष्मण दोनों जब चलते हैं तो बड़े सुंदर मालूम देते हैं।